તારીખ 20/11/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 156 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 149
પુણ્ય પાપ અધિકાર 154 ગાથા गाथा का विषय है पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बतलाते हैं। अनादि से जीव को पुण्य कर्म का पक्ष है, पक्ष हमेशा अभिप्राय पूर्वक होता है। अभिप्राय के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो पक्ष कहाँ होता है कि जहाँ अपना अभिप्राय कर्तव्य रूप का होता है कि करने लायक है, ऐसा जब अभिप्राय होता है तो उसका पक्ष आ जाता है। और ऐसा पक्ष जीव का अनादि से है, और जब तक यह अभिप्राय और यह पक्ष है वहां तक जीव धर्म को प्राप्त करने के योग्य नहीं होता।
व्यवहार का पक्ष जो कहते हैं
पुण्य कर्म का पक्ष को या व्यवहार का पक्ष को, दोनों एक ही बात है।
व्यवहार का पक्ष तो पहले छोड़ा जाए,
हाँ,
निश्चिनी का पक्ष भी छुड़ाना।
निश्चिनी का जब पक्ष छुड़ाना है तो फिर व्यवहार का पक्ष रखने का तो सवाल ही नहीं रहता। आचार्य महाराज यहाँ पुण्य पाप के अधिकार में वो बात खास वजन देकर करते हैं कि भीतर में अभिप्राय में, मैंने ज्ञान में, और अभिप्राय के साथ रहने वाली श्रद्धा में पुण्य कर्म का पक्ष नहीं होना चाहिए। और पुण्य कर्म का पक्ष से दोष है। क्यों, क्या दोष आता है कि उसे संसार पनपता है, संसार परिभ्रमण उससे होता है, ये दोष है, उससे दुख होता है। इसको दोष और दुख बता करके समझाते हैं कि इसको तुम छोड़ दो। परमठ बाहिरा जेते संधानेन पूर्णम इच्छन्ति संसार गमन हेतुं वे मोक्ष हेतुं अजानन्ता। जो परमार्थ से बाह्य है, यानी आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, और आत्मा को प्राप्त करने के मार्ग को भी वो नहीं जानता। परमार्थ में दोनों बात आती है प्रकरण वश। आत्मा का मूल स्वरूप है, वही परमार्थ है, और उसका भजन होना, उसका परिणमन होना, उसका अवलंबन होना, ये भी परमार्थ में जाता है। जो परमार्थ से बाह्य है, मैंने परमार्थ से अनजान है, यानी परमार्थ में कभी आया नहीं, मोक्ष मार्ग में कभी
आया नहीं,
आत्मा को भी नहीं जानता, आत्मा को प्राप्त करने की विधि को भी नहीं जानता, ऐसे जो जीव हैं, वे मोक्ष के हेतु को न जानते हुए परिभ्रमण से कैसे छूटना, इसके कारण को या मोक्ष मार्ग को या मोक्ष प्राप्त करने के उपाय को न जानते हुए अनजाना है मोक्ष मार्ग से अनजाना है। संसार गमन का हेतु होने पर भी कैसा है पुण्य? संसार गमन का कारण है, संसार में परिभ्रमण का गमन मैंने परिभ्रमण का कारण है। ऐसा होने पर भी पुण्य को अज्ञान से मोक्ष का हेतु जा समझ कर चाहते हैं। क्यों वो पुण्य को चाहते हैं? कि ऐसा करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत स्पष्ट गाथा है। भीतर में जिसको पुण्य का पक्षपात है उनके लिए बहुत स्पष्ट गाथा है। ये तो कुंदकुंद आचार्य की मूल गाथा है। कुंदकुंद आचार्य की मूल गाथा है। गुरुदेव ने तो इस बात को खोल करके अच्छी तरह समझाया। मूल बात तो लिखी हुई है कुंदकुंदाचार्य की, और मूल बात तो है तीर्थंकर देव की। आचार्य कहते हैं वही, तीर्थंकर कहते हैं वही, अनंत तीर्थंकर ने कहा। आत्मा है वो तो पुण्य रहित है। आत्मा में न पुण्य है न पाप है। जो उससे रहित है उसमें उसको ले आना जैसे ज्ञान है तो उसको उपयोग भूमि कहा है। समर अधिकार में क्या कहा? उपयोग भू, उपयोग भूमि, भू मैंने भूमि। उपयोग की भूमि में राग को पुण्य को ले जाना ये उसको मलिन करने का है। ज्ञान तो शुद्ध पवित्र है, उपयोग भूमि तो पवित्र है, उसमें मलिन राग को ले जाना वो अकर्तव्य को करता है, वो करने लायक नहीं है। यहाँ तो बहुत स्पष्ट बात वो है कि पुण्य भाव तुझे कल्याण का मोक्ष का कारण दिखता है वो वास्तव में भ्रांति से दिखता है। वास्तव में तो वो संसार का कारण है, मोक्ष का कारण
नहीं
है ही नहीं। तो ऐसा मोक्ष का कारण नहीं है और संसार का कारण है इस विषय में जो अनजाने हैं ऐसे लोग पुण्य को चाहते हैं, पुण्य से आत्म कल्याण करना चाहते हैं। उनको समझाएं, समझाते हैं कि ये तो तेरा संसार पनपेगा, इससे संसार फलेगा, इससे मोक्ष होने वाला
नहीं है।
हाँ, संस्कृत में तो स्पष्ट बात है। परमार्थ बाया ये ते अज्ञानेन पुण्यम इच्छन्ति, संसार गमन गमन हेतु अपि मोक्ष हेतु अजानन्तः। मोक्ष का हेतु नहीं जानने वाले को पुण्य है वो मोक्ष का हेतु दिखता है। ये नितांत भ्रांति है और ये भ्रांति बड़ा अज्ञान है और ये दूसरा अपराध है, डबल अपराध होता है। टीका। समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाले निज स्वरूप की प्राप्ति आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी मोक्ष के कारणभूत सामायिक की जो सामायिक मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थभूत ज्ञान की भवन मात्र है, एकाग्रता लक्षण युक्त है और समयसार स्वरूप है, उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को न प्राप्त हुए होते हुए जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं, ऐसे वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणाम को छोड़ते हुए भी समस्त कर्मकांड के मूल कर्मकांड को मूल से नहीं उखाड़ते। इतना लंबा एक वचन है, इधर पूर्ण विराम आया, इसके पहले सब अल्प विराम लिया है। क्या दृष्टांत लिया है आचार्य महाराज ने, ये भी लोग सामान्य पुण्य कर रहे हैं उसकी तो बात नहीं किया है, समर्थ द्रविलिंगी की बात किया है, प्रतिज्ञा शब्द लिया है ना,
समय की प्रतिज्ञा ली थी।
हाँ समय सार शुरू उसकी प्रतिज्ञा लेकर के भी, प्रतिज्ञा कौन सी लिया, सामायिक की। कैसा है सामायिक, ये भी बैठ जाता है सामायिक में, ऐसा सामायिक नहीं है, संप्रदाय में बैठ जाते ना घड़ी लेकर के, हम सामायिक में बैठे हैं, फिर तो क्या हुआ है, विकृति तो बहुत आ गई है कि सामायिक में बैठे हैं तो बातें भी करने लग जाता है, तो उतने समझ के यहाँ से नहीं उठना, उसका नाम सामायिक है, ये पथड़ा पर बैठ जाना फिर बातें कुछ भी कर लेवे, ऐसा सामायिक नहीं है। सामायिक करके आइफन किया है, सामायिक मैंने क्या, सामायिक काउंस में लिखा ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थ भूत ज्ञान की भवन मात्र एकाग्रता लक्षण, स्वरूप में एकाग्रता और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पवित्र परिणाम उत्पन्न हो उसको सामायिक कहते हैं। आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में आचरण, तो जो जब दीक्षा लेते हैं मुनि तो उसको प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं सामायिक में रहूंगा, क्या प्रतिज्ञा लेते हैं,
सामायिक में रहूंगा,
सम्यक प्रकार से मैं आत्मा में संभाव में रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं, और ऐसे पुरुषार्थ पूर्वक ये परिणाम होते हैं। सामायिक के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक परिणाम संभाव के कैसे होते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक। जिसको ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता है प्रतिज्ञा लेकर के भी, मुनि तो बन गया, क्या
बन गया,
गृहस्थी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, धंधा व्यापार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, दीक्षा लिया, फिर पुरुषार्थ नहीं किया, तो उसको क्या बताया आचार्य महाराज ने यहाँ कि ये पुरुषार्थ करने के लिए नपुंसक है, ऐसा शब्द लिखा है। क्या संस्कृत में उसका शब्द क्लीब आता है, क्लीब सामायिक प्रतिज्ञा अपनी क्लीब तया दुरंत कर्म चक्र उत्तरण क्लीब तया, पुण्य पाप के चक्कर में से छूटने का पुरुषार्थ उसको नहीं है तो उसको वहाँ पुरुषार्थहीन कह करके नपुंसक बतलाया है। आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है तो
एक ग्रस्त का रहा है, एक मुनि का रहा तो ग्रस्त अच्छा से।
हाँ क्यों नहीं, जो गृहस्थ बाह्य संयोगों में गृहस्थ है, अंतरंग में तो वो गृहस्थ नहीं, अपने को गृहस्थ नहीं मानता है, न मैं गृहस्थ हूँ न मैं त्यागी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। गृहस्थपना भी पूर्व कर्म का उदय है और बाह्य में त्याग होता है वो भी पूर्व कर्म का उदय है, प्रवृत्ति भी कर्म का उदय है और निवृत्ति भी
कर्म का
उदय है। बाह्य संयोग आश्रित है, पूर्व कर्म से होती है। पूर्व कर्म जहाँ तक है वहाँ प्रवृत्ति रहती है,
यानी प्रवृत्ति होता हो निवृत्ति होता हो वैसे क्या लेना,
वो तो अपने स्वरूप की प्रवृत्ति अंदर में कर लेता है, बाह्य प्रवृत्ति निवृत्ति से भिन्न होकर के भीतर में अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम करने लग जाते हैं, ऐसा काम करते हैं। देखो टीका क्या कहते हैं, समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाले मोक्ष, मोक्ष में नास्ति अस्ति दोनों लिया है, मोक्ष की परिभाषा पहले किया है कि मोक्ष कैसा है, कि समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाला है। कर्मों का नाश तो होता है लेकिन यहाँ उतना नहीं लिया, निखिल कर्म पक्ष स्वयं क्षयम क्षय संभावित आत्मलाभम मोक्षम अभिलषंतो अपि। कर्म का नाश तो होता ही है मोक्ष में, लेकिन उतनी बात नहीं लिया यहाँ। समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से पहले पक्ष का नाश होता है, फिर कर्म का नाश होता है, ये इसका क्रम है। कर्म का पक्ष रह जाए और कर्म का नाश होने शुरू हो जाए, ऐसा भी कभी बनता नहीं। शुरू नहीं होगा तो समस्त नाश होता होगा क्या से?
पहले
पक्ष छोड़ना पड़ेगा। अभिप्राय छूटेगा, श्रद्धा छूट जाएगी तो पक्ष छूट जाएगा। पक्ष छूटेगा फिर जो होगा उसका निषेध आए बिना रहेगा नहीं, उसका निषेध आएगा आएगा और आएगा। समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से, खास करके के पुण्य भाव का पक्ष जिसको नहीं है, उससे क्या होता है, निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। कर्म का पक्ष का नाश होने से समस्त में एक भी प्रकार का नहीं, ये पुण्य उच्च कोटि का है इसलिए करने लायक है, ऐसा नहीं लिया। या तो ये पुण्य पुनानुबंधी पुण्य है इसलिए वो करने लायक है, वो बात नहीं लिया। समस्त में क्या कौन सा बाकी रहा? नहीं रहा। पुनानुबंधी पुण्य भी नहीं रहा। तीर्थंकर प्रकृति सबसे पुण्य प्रकृति कौन सी बढ़िया है?
सबसे तीर्थंकर प्रकृति।
उच्च कोटि की सबसे उच्च कोटि की प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति जो पुण्य की प्रकृति है, इससे कोई बड़ी ऊंची प्रकृति जगत में नहीं है। तो तीर्थंकर क्यों बांधते हैं उसको? तीर्थंकर होने वाले इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों करते हैं? तो वो करते नहीं है, उसका निषेध करते हैं फिर बंद जाती है। हाँ, निषेध करते हैं। गुरुदेव क्या कहते थे तीर्थंकर प्रकृति को? क्या कहते थे? जहर का झाड़ है। क्या कहते थे? जहर का झाड़ है, ऐसा
कहते हैं।
ये कहें तो गुरुदेव की ताकत है, है? विश्वकुंभ, वो तो आगे आएगा, वो तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आएगा। तो खुद तीर्थंकर द्रव है क्या? स्वयं तीर्थंकर द्रव होते हुए भी तीर्थंकर प्रकृति को क्या कहते थे? कि ये जहर का झाड़ है, जहर का वृक्ष है, उस पर फल आएगा, वो किंपाक वृक्ष जहर का फल आएगा, उसमें आत्मलाभ है
नहीं।
कहाँ से वो बात आती है? कि इधर से आती है कि समस्त कर्म के पक्ष का नाश करना है। तीर्थंकर प्रकृति का पक्ष करो, दूसरा नहीं करो, ये बात इधर परमार्थ मार्ग में
नहीं है।
अगर कोई ऐसा मानता है तो वो मार्ग को नहीं जानता है, अनजाना है, वो मार्ग से अनजाना है। देखो प्रश्न ऐसा उठा सकते हैं अपन कि क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने से कोई तीर्थंकर होता है क्या? इससे होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने से तीर्थंकर होना होता है, ऐसी बात नहीं है। वो द्रव तो अनादि का तीर्थंकर द्रव है। कहाँ से है, कब से है? अनादि से तीर्थंकर द्रव है। जो तीर्थंकर होने वाला द्रव है, जीव द्रव, वो नया पैदा हुआ या अनादि से है? अनादि से। इसमें ऐसी योग्यता है कि ये जीव आगे जा करके भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है। तो वो तो द्रव की स्वयं की योग्यता है, ये कोई तीर्थंकर प्रकृति के कारण से ये योग्यता नहीं आती है। कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होवे इसलिए वो तीर्थंकर बने, ऐसी बात अनादि से इस प्रकार की योग्यता इस जीव द्रव में होती है, वो भी जीव का मूल स्वभाव नहीं है।
सत्य भगवान ने तो बता दिया, महावीर भगवान का से पहले
ही
है। सत्य भगवान ने
अगला भगवान बताया था ना कि हमारी,
हाँ
मतलब पहले बता दिया,
वो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले बता दिया था। लेकिन इसके पहले होने वाले सभी केवल ज्ञानियों को मालूम हो गया था कि ये द्रव तो अनादि से तीर्थंकर द्रव है। केवल ज्ञान में तो अनादि की बात आ जाती है ना, तो मालूम हो गया था। ये तो प्रसिद्ध किया ऋषभ भगवान ने, तो पहले प्रसिद्धि दिया, पहली प्रसिद्धि दिया उतनी बात है। वो भाषा में सबको प्रसिद्धि देने से सबको मालूम पड़ा, जिसने सुनी उसको मालूम पड़ा। लेकिन इसलिए वो तीर्थंकर हुए हैं ऐसा भी
नहीं है,
नहीं है। ऋषभदेव भगवान के कहने से भी वो तीर्थंकर नहीं बने,
मालूम हो चाहे ना हो,
हाँ इससे निरपेक्ष है। किसी को मालूम हो या किसी को मालूम नहीं हो ना हो, इससे कोई तीर्थंकर बनने वाला कोई इससे कोई लेना देना नहीं है,
कोई बनने बनाने वाला
नहीं, कोई बनने बनाने वाले नहीं है उसको, ऐसी बात है। मालूम है तो ये बात है कि हमको भी तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का पक्ष नहीं करने का है। जब तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का पक्ष नहीं करने का है तो फिर दूसरे पुण्य का पक्ष करने का है, ये बात तो समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात है। क्या कहते हैं फिर से, समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाला मोक्ष यानी निस्वरूप की प्राप्ति, वो नाश नास्ति से किया, आत्मलाभ स्वरूप ये अस्ति से कहा। क्या प्राप्ति होगा मोक्ष में? आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष में क्या प्राप्त होता है?
आत्मा
प्राप्त होता है, ये अस्ति से बताया। ऐसा मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी चाहते हैं कि हमको ऐसा मोक्ष चाहिए, चाहते हुए भी परिणमन उल्टा करता है, ऐसा कहते हैं। क्या
चाहते हुए भी परिणमन उल्टा?
जैसे पता तो चला शास्त्र पढ़ने से कि पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन परिणाम नहीं करते हैं, लक्ष्य का परिणाम नहीं करते। जान तो लिया, समझ में तो आया कि ये पूर्णता प्राप्त करने योग्य है, हम चाहते हैं उसको। इसका मतलब क्या है कि वो हम चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं करते हैं, तो चाहना कहाँ रहा? कि वो चाह है वो सही रूप में नहीं है।
जब भी हमको परिणाम करना पड़ेगा तो हमी को करना पड़ेगा, चाहे कभी भी करें।
तो फिर अपना परिणाम कौन करे? जब भी परिणमन करना है तो हम ही परिणमेंगे या हमारे द्रव्य में कोई दूसरा परिणमन करेगा?
हमको ही करना पड़ेगा,
हमको ही करना
पड़ेगा। करे चाहे कल करे,
कभी भी करे, आज करे कल करे, लाख वर्ष या लाख भव करोड़ भव के बाद करे, करना पड़ेगा अपने को।
अगर सुखी होना है,
सुखी होना है तो संसार में से, संसार के दुख में से छूटना हो तो श्री गुरु कुछ करा देंगे नहीं। श्री गुरु तो रास्ता बताएंगे, अंगुली निर्देश करते हैं कि इधर रास्ता है, तुम इधर जाओ भीतर में, इधर रास्ता है भीतर में जाओ, उतना ही बताएंगे, कुछ करा देंगे नहीं, ऐसी बात नहीं होती। नोए वालू अंतर भव दुख मूल मार्ग सांभो जिन नोरे, जहाँ तक अंतरंग में भव दुख को प्रीति किया है, वालप किया है, वहां तक मोक्ष मार्ग सुनाई देता नहीं है, सुनने पर भी सुनाई देता नहीं है। और भव दुख से त्रास हो गया जिसको कि अभी मेरे छूट जाना है, किसी हालत में छूट जाना है, किसी कीमत में छूट जाना है। क्या?
किसी भी हालत में छूट जाना है,
किसी भी कीमत पे छूट जाना है। સંયોગ થી છૂટવું છે, શરીર મેં રોગ હુઆ, પીડા હોય તો દુઃખ હુઆ ને, તો ઉસકો રોગ મિટાને કા ઇલાજ કરતા હૈ क्या? लेकिन शरीर में अपनत्व है इसलिए पीड़ा का दुख हो रहा है, वो अपनत्व छुड़ाने का प्रयत्न नहीं करता, गड़बड़ बड़ी है। एक कुत्ता ने किसी ने लकड़ी फेंक करके मारा, तो कुत्ता को लकड़ी लगी, कुत्ता लकड़ी को काटने लगा अपने मुंह से कि तूने मुझे मारा। फेंकने वाले को नहीं देखता है, उसको नहीं काटने को जाता है कि किसने लकड़ी फेंकी, लकड़ी को काटने लगता है। वो कितना अज्ञान है, यही निमित्ताधीन दृष्टि है।
बंदर गंदे को
ऐसी बात है, रोग से छूटना है। रोग किससे हुआ, जिस अज्ञान से रोग हुआ उससे नहीं छूटना है। रोग को छूटने के उपाय में भी शरीर का ममत्व बढ़ाता है। क्या करता है?
और बढ़ाता है।
रोग को, रोग के दुख से छूटने का उपाय करने वक्त क्या करता है? शरीर के ममत्व को बढ़ा लेता है,
और रोग को बढ़ाता है,
दोबारा रोग आएगा। ये परिणाम नए असाता वेदनी के बंध के कारण होते हैं। क्या? रोग को मिटाने का परिणाम किस प्रकार के बंध करेगा? असाता वेदनी का बंध होगा। जिसको ऐसा अभिप्राय है, न तो उसका रोग मिटेगा, न वो धर्म भी शुरू करेगा। चालू रोग है इस वक्त, तुमको धर्म करने में क्या आपत्ति है?
क्या
आत्मा रुकाता है तो उसको छुड़ाओ वहां से, जहां रुकता है वहां से छुड़ाओ।
यानी ज्ञानियों को तो असाता अनुकूल लगती है।
अनुकूल लगती है ज्ञानी को, असाता अनुकूल लगती है क्या? असाता तो अधिक कल्याणकारी होती है। पढ़ा नहीं पढ़ा उसमें?
हाँ
हाँ, 927 वाला पत्र बहुत बढ़िया है इसमें। 913 है। साता असाता के उदय के अनुभव को प्राप्त होने का मूल कारण को खोजते हुए ऐसे महत्पुरुषों को ऐसी एक विलक्षण स्वानंद आश्चर्य वृत्ति पैदा होती कि साता से भी असाता का उदय प्राप्त होने से, और उसमें भी तीव्र असाता का उदय प्राप्त होने से उनका पुरुषार्थ विशेष रूप से जागृत होता, उल्लसित होता, और वो समय अधिक रूप से कल्याणकारी समझते थे। हाँ, आ जाओ तुम मसाता, तुम भी आ जाओ, देखे हमारी ताकत को, हम कितने लड़ते हैं तुम्हारे से, कौन 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 किसका विजय होता है देखिए। ऐसी बात है, ज्ञानी क्या आत्मार्थी भी असाता से, प्रतिकूलता से कभी घबराता नहीं है। जो होना होगा सो होगा, मेरे में कुछ होने वाला नहीं है, मेरे से बाह्य जो कुछ होगा सो होगा, मेरे क्या उसमें लेना देना है। बहुत अच्छी बात नहीं, आइए बुधा 913 में। મહાનતા બતાવે છે ને, હું તો ઇન્દ્રિયોને તો વશ કરી છે, એમાં તો કઈ સવાલ જ નથી। क्या कहते हैं, आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी, चाहते तो है कि हमको मोक्ष होना, आत्मा का लाभ होना, और परिणमन करते हैं उल्टा। मोक्ष के कारणभूत जो सामायिक है, मैंने मोक्ष के कारणभूत जो परिणाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव कैसा है, परमार्थ भूत ज्ञान की भवन मात्र है, पारमार्थिक ज्ञान का परिणमन है वो। सामायिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और परमार्थ भूत ज्ञान का भवन तीनों एक अर्थ है। एक भाव को समझाने के लिए तीन प्रकार की बात किया, उसको सामायिक भी कहा, उसको संदिग्ध संज्ञान चारित्र भी कहा। उसी भाव को परमार्थ भूत ज्ञान का भवन भी कहा। ज्ञान में ज्ञान का स्वसंवेदन रूप परिणाम है, वो परमार्थ भूत ज्ञान का परिणाम है। परम प्रयोजन भूत ज्ञान का वो परिणाम है, भवन है, भवन मैंने परिणाम। तो कैसा है, एकाग्रता लक्षण युक्त है, निज स्वरूप में वहां एकाग्रता होती है। उपयोग जब स्वरूप में स्तंभित हो जाता है तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होता है। उसको सामायिक कहने में आया है, सम्यक प्रकार से संभाव से अपने स्वरूप में एक मैंने एकाग्र होना, आकर के एकाग्र होना, उसी का नाम सामायिक है। कि हमारे राजू भाई सामायिक मंडल वाले बोले जाते थे। क्या नाम था सामायिक मंडल वाले राजू भाई? कैसे सामायिक करते थे ना? लंबे लंबे राग से बोलना, क्या जो पद है सामायिक का उसको जोर जोर से बोलना या मन में बोलना, इससे क्या होता है, पुण्यमंद होता है। पुण्यमंद होता है वो सामायिक है क्या? तो सामायिक नहीं है, है? हाँ कंठस्थ हो, रोज बोले तो कंठस्थ हो जावे, वो सामायिक है क्या? तो वो सामायिक नहीं है। मानते थे क्या? उस जमाने में मानते थे कि हम सामायिक करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं, ऐसा मानते थे। लेकिन वो पुण्यमंद का कारण था, और इसका पक्ष होता था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा पक्ष भी होता था। दूसरे नहीं करते हैं, नहीं करते उस पर नजर क्यों गई? जो नहीं करते उस पर नजर क्यों गई? हाँ उसका अहम भाव मान पोषण के हिसाब से गई, हम तो करते हैं दूसरे नहीं करते हैं, हम तो स्वाध्याय में आते हैं दूसरे लोग नहीं आते हैं, नितांत गलत है, सरासर गलत है। नहीं आते हैं उसको क्यों देखना, जो नहीं आता है उसको क्यों देखना? हम क्या करते हैं कि जो लोग धर्म के क्षेत्र में आकर के धार्मिक कार्य नहीं करते उनको देखते रहते, ऐसा लोग नहीं करते, लोग ऐसा नहीं करते, लोग ऐसा नहीं करते। जरूरत क्या है इस बात की, तेरे क्या जरूरत है इस बात की? हाँ उनको देखते रहते हैं, तो उनको देखते रहना ऐसा ही करते हैं हम, क्या ठीक है वो बात? दूसरे की टिप्पणी करते रहना ये कोई धर्म है क्या? दूसरों की टिप्पणी करते रहना वो कोई धर्म है क्या? कि वो धर्म हाँ निर्विकल्प हो जाए, त्याग के विकल्प से भी निर्विकल्प हो जाए तब तो सही त्याग है, वरना तो त्याग का अहम भाव है, त्याग नहीं है लेकिन त्याग का अहम भाव है, वो आता है। कि जो भक्ति अपने लिए नहीं करता है, क्या वो भक्ति दूसरों को दिखाने के लिए करता है? वहाँ एक पद भक्ति का लिया है, लेकिन जो स्वाध्याय करता है, दान देता है, सामायिक करता है, कुछ भी करता है, हृदय वंदन करता है, जो भी करता है, वो अपने लिए नहीं करता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए करता है, आडंबर करता है। तो वास्तव में आत्म कल्याण की प्रवृत्ति नहीं करता हुआ एक प्रकार का व्यवसाय करता है, क्या करता है? व्यापार करता है। वो स्वाध्याय भी अपने लिए करना, जो दूसरों के लिए स्वाध्याय करता है वो स्वाध्याय नहीं करता है, व्यापार करता है, धंधा करता है, ऐसा है। तो घणो लेकिन एक ध्यान खींचने के लिए दूसरे की टिप्पणी अपने को नहीं करनी है। प्रतिक्रमण पाठ करते वक्त या सामायिक पाठ करते वक्त ये मात्र स्वभाव है, मेरा स्वरूप में एकाग्रता लक्षण युक्त परिणाम नहीं हुए वहां तक ये शुभ भाव है, वास्तव में वो सामायिक और प्रतिक्रमण है नहीं। ऐसा श्रद्धान रखना, ऐसा ज्ञान में समझ रखना। यहाँ तो जो एकाग्रता लक्षण युक्त है और समयसार स्वरूप है, वही समयसार स्वरूप है, समय दर्शन ज्ञान चारित्र वही समयसार है, उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी दीक्षा के समय में उत्कृष्ट दृष्टांत लिया है, दीक्षा के प्रसंग में उसकी प्रतिज्ञा भी लेता है और प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण फिर भी पुण्य कर्म के चक्कर में से वो छूट सकता नहीं है। ऐसे हीन पुरुषार्थ वाले परिणाम होने से क्या करता है, परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र जो सामायिक रूप है, ऐसा जो आत्म स्वभाव है, उसको न प्राप्त होते हुए धर्म से वंचित रहता है। उसको परमार्थ भूत ज्ञान नहीं है, परमार्थ भूत ज्ञान का भवन रूप परिणमन नहीं है, मतलब उसको सामायिक नहीं है, उसको आत्म स्वभाव की प्राप्ति भी नहीं है। परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र, इसमें मेरे में भवन शब्द लिया है, मूल में क्या है देखो ना, भवन परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र सामायिकम आत्म स्वभावम अलभमानाः नहीं प्राप्त करता हुआ। हाँ मैंने ऐसा किया है, भूतकाल में हमारे जीव ने भी जीने दीक्षा अंगीकार किया और प्रतिज्ञा लिया, सामायिक की प्रतिज्ञा लिया कि मैं स्वरूप में लीन हो जाऊंगा और 28 मूल गुण और पंच महाव्रत में लगा रहा, स्वरूप में लीन हुआ नहीं। क्या बोला उसको, कहो नपुंसक है, ऐसा बोला, पुरुषार्थ नहीं उठाया, आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ नहीं किया। तो आत्म स्वभाव को न प्राप्त हुए जिनके अत्यंत शूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए, पाप के परिणाम से वो निवृत्त हो गया, क्योंकि दीक्षा लिया तो गृहस्थी छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, तो अत्यंत संक्लेश रूप जो पाप परिणाम है ऐसे कर्म से वो निवृत्त हुए। और अत्यंत स्थूल, दोनों को अत्यंत स्थूल बताया है, पुण्य परिणाम भी अत्यंत स्थूल है, पाप परिणाम भी अत्यंत स्थूल है, अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध माने पुण्य परिणाम, ऐसे परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं, ऐसे वे पुरुषार्थहीन जीव कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित होएगा। देखो हम पाप नहीं करते, हमको पाप के एक परिणाम नहीं आते, बिल्कुल घर छोड़ दिया, घर की हमको याद भी नहीं आती, धंधा छोड़ दिया, धंधा का स्मरण भी नहीं होता, हमारे जो हमारी क्रिया है मुनिपद की जो क्रिया है उसमें उतने हम लगे हैं कि हमको घर गृहस्थी का स्मरण भी नहीं होता है। वो क्या है, कर्म का गुरुत्व लघुत्व का अनुभव है, गुरुत्व मैंने भारी कर्म मैंने पाप कर्म, और लघुत्व मैंने हल्का, भारी हल्का पड़ा, तीव्र मंद कषाय होता रहता है, उन्हें होता है तो पाप के परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन एक एक प्रकार का भी मंद कषाय उसको नहीं रहता, उसमें भी चढ़ाव उतार आता है, मंद कषाय में भी थोड़ा मंद, अधिक मंद, थोड़ा मंद, ज्यादा मंद, कम मंद, ऐसा रहता है। कर्म के वो कर्म का अनुभव है, क्या है, कर्म का अनुभव है, वो आत्मा का अनुभव नहीं है, जो कषाय का अनुभव है, मंद कषाय का अनुभव है, पुण्य कर्म का अनुभव है, वो कर्म का अनुभव है। वो कर्म के अनुभव के प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित होते हुए भी क्या गलती करता है, संतुष्ट होता है। जैसे इधर मुमुक्षु क्या करता है, अपन तो अपने लिए भूतकाल में दीक्षा लिया है तो अभी याद नहीं है, आज तो स्वाध्याय अच्छा, आज तो इतना भक्ति किया, आज तो पूजा भी 5 पूजा किया, 1 पूजा नहीं किया लेकिन 5 पूजा किया। हाँ, तो हम संतुष्ट होते हैं क्या, ऐसे पुण्य कर्म के कारण से हम संतुष्ट हो जाते हैं। साध्या अच्छा किया, पूजा भक्ति अच्छा किया, तो दान भी लिखवाया, दान भी दिया, ऐसा भी किया, ऐसा भी किया, ऐसा करके ऐसे संतुष्ट चित्त हुए भी, ये जो चित्त का संतुष्ट होना है पुण्य भाव में, यही दर्शन मोह की वृद्धि का कारण है। जिसको द्रव्य दृष्टि नहीं हुई और जिसको पर्याय दृष्टि रही, वो तो मंद कषाय में संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? कि पर्याय में अहम बुद्धि है, अच्छे परिणाम किए मैंने, मेरे परिणाम अच्छे थे, आज मेरे परिणाम बिगड़े नहीं, बिगड़े तो खेद खिन होता है, थोड़ा मंद कषाय हुए तो उसका अच्छा लगता है। ये संतुष्ट चित होना ये दर्शन मोह की वृद्धि का कारण है। तो हम चारित्र मोह को क्या, हम चारित्र मोह की तीव्रता का मंदता को देखते रहते हैं और कहां दर्शन मोह बढ़ जाता है उसका हमें पता नहीं लगता है। ये लाठी पकड़ो, वो चारित्र मोह के परिणाम की लाठी मत पकड़ो, दर्शन मोह कैसे मंद हो वो लाठी पकड़ो। क्या लाठी में से लकड़ी के टेके से चलना, तो वो भी सही लेना है, ऐसा कहते हैं, गलत आधार नहीं लेना है, सही आधार लेना है, ऐसी बात है। ये भूल दीक्षा लेने वाला द्रविलिंगी भी करता है तो मुमुक्षु को तो सहज हो जाएगी, उसने तो मोक्ष की प्रतिज्ञा किया था फिर भी भूल किया, मोक्ष की प्रतिज्ञा किया था लेकिन पूर्णता का लक्ष्य बांधा नहीं था। देखो गुरुदेव ने कहां से निकाला ये सूत्र, गुरुदेव ने कहां से निकाला कि द्रविलिंगी भी मोक्ष की प्रतिज्ञा करने वाला दीक्षा के काल में भूल क्यों करता है कि उसको पूर्णता का लक्ष्य नहीं है, इसलिए तो वो संतुष्ट हो जाएगा, अधिक मंद कषाय होने से वो संतुष्ट हो जाएगा और दर्शन मोह की वृद्धि करेगा। हाँ, पर्याय में संतुष्ट होना तो दर्शन मोह को, मिथ्यात्व को तीव्र करने का परिणाम है। ये भूल कभी करने लायक नहीं है। चारित्र मोह तीव्र होवे तो घबराता है, दर्शन मोह तीव्र होवे तो उसको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ हो गया, कैसे हो गया, इसलिए दर्शन मोह से वो नहीं छोड़ता, चतुर्थ गुण स्थान में नहीं आता। और चारित्र मोह मंद करते, कषाय मंद करते फिर तीव्र हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी जड़ तो साबुत है।
कैसे पता करेगा?
तो उसको वहां ऐसे लेना है कि मेरा पुरुषार्थ जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नहीं चलता, इसके लिए नहीं चलता है, तो मैं पुरुषार्थहीन हूँ, कषाय मंद होता हुआ भी मैं पुरुषार्थहीन हूँ, ऐसा करके पुरुषार्थ को जागृत करना चाहिए। पुरुषार्थ, आत्मिक पुरुषार्थ जागृत नहीं हुए और कषाय मंद हो जाए तो ऐसा करने लायक नहीं है, इसे सही उपाय नहीं है, यही तो बताते हैं।
मोक्ष की प्रतिज्ञा लेता
है, अगर पूर्णता का लक्ष्य होता तो वो संतुष्ट नहीं होता। भावलिंगी मुनि संतुष्ट नहीं होता और इधर द्रविलिंगी संतुष्ट हो गया, क्या कारण है? भावलिंगी मुनि क्या करता है, कुछ मेज से कचना वर्त में आता है, मेरे को तो बहुत बाकी है,
बहुत बाकी है,
क्या कहते हैं, बहुत बाकी है। क्यों? जो केवल ज्ञान में जो अनंत वीर्य का पुरुषार्थ चलता है और केवल ज्ञान पूर्ण होता है, इसकी दशा के साथ मिलान करता है, तो ज्ञान भी अनंतवा भाग है, पुरुषार्थ भी अनंतवा भाग है। हाँ, गणधर भी कहते हैं कि हम पामर हैं, भगवान को देखते हुए क्या कहते हैं, कहाँ आपका पुरुषार्थ, कहाँ आपका ज्ञान, कहाँ आपका सुख, मेरे पास तो कुछ नहीं है। निरूपण बने, निरूपण ऐसा नहीं करेगा, वो खुद ऐसा निरूपण नहीं करेगा, लेकिन परिणमन ऐसा करेगा। जैसे हमने गुरुदेव से बात सुनी, लीजिए भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म की बात सुनी, हम दूसरों को सुना भी देते हैं, लेकिन परिणमन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात है। सुनना जानना एक बात है, परिणमन करना दूसरी बात है। ध्रुवलिंगी तुम्हें उपदेश देगा तो देगा, तो शास्त्र अनुसार उपदेश देगा, लेकिन परिणमन ऐसा उसका
सुना जाना भी है,
परिणमन नहीं किया। तो परिणमन ये अवस्था में संतुष्ट होने का क्यों बनता है? जैसे द्रव्य दृष्टि हो उसको तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसके दृष्टि पर्याय पर है ही नहीं। लेकिन जो मुमुक्षु है, जिसको द्रव्य दृष्टि नहीं है, उसको तो संतोष नहीं होवे, ऐसा कैसा बने? उसको अगर पूर्णता का लक्ष्य होता है तो बन सकता है,
नहीं।
तो बन सकता है, पूर्णता का लक्ष्य होवे तो
नहीं।
तो बन सकता है, क्यों? कि उसको ये होगा कि मुझे तो पूर्णता प्राप्त करनी है, मेरे परिणाम में मैं संतुष्ट कैसे हूं? मैं तो कुछ नहीं किया, अभी जो कुछ किया उसमें क्या गिनेगा, कुछ नहीं किया मैंने तो उसको ये सूत्र आधार है। द्रव्य दृष्टि वाले तो द्रव्य का आधार है, और मुमुक्षु को तो लक्ष्य का आधार है, सही लक्ष्य हुआ है वही आधार है उसको, वरना तो उसको हो ही जावे संतुष्टता नहीं हो। इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, मुमुक्षु की भूमिका में भी व्यवस्था तो होनी चाहिए, जिससे वो संतुष्ट नहीं हो करके द्रव्य दृष्टि तक पहुंच सके। और संतुष्ट हो जाएगा तो मिथ्या तो तीव्र हो जाएगा, तो द्रव्य दृष्टि होगी नहीं, तो इसकी व्यवस्था है। तो देखिए गुरुदेव ने कितना उपकार किया है, कितना बड़ा उपकार किया है गुरुदेव ने। संतुष्ट चित होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर, देखो लक्ष्य का बात लिया, क्या लिया, स्वयं स्थूल लक्ष्य वाला है, पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य नहीं है, द्रव्य का लक्ष्य नहीं है, दोनों में से एक का भी लक्ष्य नहीं है, सिर्फ ये मुनि दीक्षा लिया, कषाय मंद किया, क्रिया का पालन किया, यही लक्ष्य है उनको, कि मुनि योगी पंचमावृत का पालन किया, बहुत कषाय मंद किया, देवलोक में जाने का परिणाम कर लिया, स्थूल लक्ष्य है वो, ये स्थूल लक्ष्य है। आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वो स्थूल लक्ष्य है, क्योंकि स्थूल उसके परिणाम भी स्थूल है, उसका फल भी स्थूल है। स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संकलेश परिणाम को छोड़ते हुए, पाप परिणाम को छोड़ते हुए, समस्त कर्मकांड को मूल से नहीं उखाड़ते। ये कर्मकांड को करते रहता है, क्रिया को करता रहता है, उसके मूल से उखाड़ना है वो नहीं करता है। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से, दूसरे ने अज्ञान नहीं, कर्म का उदय ने अज्ञान नहीं कराया, स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्मों को ही बंध का कारण मानता है। पाप नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, एक ही बात करता है, और व्रत नियम शल सशील तप इत्यादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न जानता हुआ और उसको मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करता हुआ, मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करता रहता है, क्या करता है कि पाप को तो छोड़ता है, छुड़ाता है, और पुण्य को अंगीकार करता है और दूसरों को भी करवाता है। क्यों?
इससे आत्मा का लाभ होगा, इससे आत्मा का लाभ होगा, इसके आत्मा का कल्याण होगा, इससे धर्म होगा, ऐसा मानता हुआ वो मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। मुनि बन के भी जिन दीक्षा अंगीकार करके भी वो मिथ्यात्व को पुष्ट करता है और अनंत संसार में भटकता है। समर्थ दृष्टांत ले लिया, पढ़ने वाले को तो अपनी अपनी भूमिका में जो भी शुभ भाव होते हैं उसमें कभी भी संतुष्ट होने की भूल करना नहीं है। क्या है सबक इसमें, क्या है कि शुभ भाव का पक्ष नहीं करना है, पुण्य का पक्ष नहीं करना है, उस पक्ष को छोड़ देना है। अनादि से उसका पक्ष किया हुआ है, ये घोर अज्ञान है, घोर मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व और अज्ञान को छोड़ करके आत्मकल्याण करना है। अज्ञान और मिथ्यात्व को पुष्ट करके कितना भी पुण्य करेगा तो भी वो संसार में लिखड़ेगा। अनंत बार नवमी ग्रीवे गया है ना छेडाला में, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव को बुझायो, आत्मज्ञान बिन लेस सुख ना, लेस सुख भी नहीं पाया, लेस धर्म भी नहीं पाया। इसका मतलब ये है, संस्कार कहाँ देखा, संस्कार मिल गया है वो देखा क्या, कहाँ देखा, किधर मिला पड़ा हुआ देखा कुछ
नहीं।
तो ये तो फालतू की कल्पना करके संतुष्ट हो गए हैं,
ऐसा लगता है हम तो हुए।
जिसको संस्कार मिल गया है, पड़ गया है, ऐसा संतोष आता है, वो उसको संस्कार मिला ही नहीं है इसको वो प्रसिद्ध करता है। ऐसा परिणाम क्या प्रसिद्ध करता है,
संस्कार
कि उसको तो मिला ही नहीं है। हाँ, जिसको संस्कार मिला हो उसको तो आत्म रुचि से संस्कार मिलता है, जिसको आत्मा की रुचि से संस्कार मिलता है वो संस्कार में कभी संतुष्ट होता नहीं। नहीं गलती किया, नई नई गलती करते जाते हैं। जिस शास्त्र ज्ञान से, जिस ज्ञानी के समागम से गलती मिटानी है वहां नई गलती चालू कर दिया। ये सब गृहित मिथ्यात है, क्या है ये सब गृहित मिथ्यात है। नई गलती करना, बुद्धिपूर्वक गलती करना, वो गृहित मिथ्यात है। हाँ, वो सब दिगंबर है ना, मानने लग जाते हैं देवगुरु शास्त्र तो सच्चे हैं इसलिए हम ग्रहित तो नहीं है, ये भी संतोष लिया, ये भी ग्रहित है। ऐसा संतोष लेना वो भी ग्रहित है। ग्रहित तो दूसरी बात है, ग्रहित तो बुद्धिपूर्वक नहीं गलती करता है, उसको ग्रहित मिथ्यात कहने में आता है। और ग्रहित मिथ्यात माने क्या, कि मिथ्यात तीव्र हो जाता है तो अग्रहित में से ग्रहित में आ जाता है। हाँ, बहुत बहुत दर्शन में तीव्र होने से ग्रहित मिथ्यात होता है, ये बात है। गंभीर बात है, ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे कि ये पोपाबाई का राज नहीं है, ऐसा नहीं चलता, बहुत गंभीर विषय है यहाँ तक।